चलिए तफसीर देखते हैं आयत नंबर 8 से। वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। क्या करते हैं वो, उनकी सिफत क्या है? युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यखदाउन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून, और नहीं वो धोखा देते किसी को मगर अपनी ही जानों को, लेकिन उनको इसकी समझ नहीं, शऊर नहीं है उनको। क्या है उनकी कैफियत? फी कुलूबिहिम मरादुन, इनके दिलों में बीमारी है। क्या होता है इनकी बीमारी के साथ? फजादहुमुल्लाहु मरादा, पस बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। इंजाम क्या है? वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों, वजह क्या है? बीमा कानू यकजीबून, इस बात पर कि वो झूठ कहते थे। यहाँ से रुकू का आगाज है। बरह रास्त आयतों पे जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा पिछली आयतों के साथ इनका रब देख लें, तो सूरत बकरा के आगाज में कुरान पाक का शक और शुबे से बालातर होना बयान किया गया कि जालिकल किताबु ला रईब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी जो भी पढ़ने बैठे, जो सुनने आए, जो सुनाने आए, वो पूरे शरह सदर के साथ आए। क्योंकि जब किसी चीज़ में शक पड़ जाता है तो इंसान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने 5 आयतों में इस हिदायत से फ़ायदा उठाने वालों का तذکرہ किया, मुत्तकीन के तारुफ से, कि तकवा वाले लोग वो होते हैं कि जिनमें खास खूबियाँ होती हैं। फिर 2 आयतों में उन लोगों का तذکرہ था कि जो मानते नहीं हैं, खुले तौर पर इनकार करने वाले, कट्टर काफिर, पक्के इनकारी, अमल के भी और अकीदे के भी। इसके बाद अब 13 यानी 13 आयात में, आयत नंबर 20 तक, कुछ ऐसे लोगों का तذکرہ है जो मुसलमान या मुत्तकी और काफिर के बीच के लोग हैं। गोया कि आप कह सकते हैं कि हिदायत के एतबार से इंसानों की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म मुत्तकी, तकवा वाले, जो बच बच के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, डर डर के गुजारते हैं, अमल करते भी हैं फिर भी डरते हैं। दूसरे वो लोग जो बेखौफ है, किसी किस्म का उनके दिल में खौफ नहीं, गलत काम करके भी अपने आप को ठीक कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम गलत हैं। लेकिन इन 2 के बीच में एक तीसरा गिरोह है जिसको यहाँ वमिनन नास कहा गया। पहली बात तो तवज्जो की है कि यहाँ लफ्ज मुनाफिक नहीं बोला गया, जैसे कि पीछे काफिरीन या कफरू की बात की गई और जैसे मुत्तकीन की बात की गई। बस ये कह दिया कि लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। टेक्स्ट के एतबार से अगर देखें ना, तो इससे मुराद मदीना के यहूद हैं। क्यों? कि यहूद मदीना अल्लाह को भी मानते थे, आखरत को मानने का दावा भी करते थे। ये अलग बात है कि अल्लाह के मानने के बीच में भी शिर्क आ चुका था। अल्लाह को एक मानने की बजाय उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, और आखरत का अकीदा जो सही अकीदा है उसकी बजाय इस अकीदे के मानने वाले हो चुके थे कि नबी पैगंबर आएंगे और हमारी सिफारिश करेंगे, हज़रत इब्राहिम हमारी सिफारिश करेंगे, कुछ भी कर लो तुम सिर्फ इसलिए बख्शे जाओगे कि तुम्हारा नाम यहूदी है। कुछ बातिल अकायद आ चुके थे, लेकिन बहरहाल इनकार नहीं करते थे आखरत का, मरने का मान को मानते थे, उसके बाद जन्नत या जहन्नम दोनों को मानते थे। लेकिन इनकी असल दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी बात यहाँ बयान कर दी कि वमिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह को तो मानते हैं, और वाकई वो मानते थे। ये अलग बात है कि अकेले एक को मानने के बजाय बहुत सारों को भी मानते थे या दूसरे को भी मानते थे। साथ ही वह बिल यौमिल आखिर, आखरत को मानते हैं। यहाँ मिसिंग क्या है, गौर से देखिए। ईमान कब पूरा होता है? जब ईमान बिर रसूल भी हो, यहाँ आमन्ना बिल्लाही तो है लेकिन आमन्ना बिर रसूल नहीं है। उस दौर में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे। आज के दौर में इससे मुराद हर वो शख्स है जो अल्लाह को तो माने लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़रिए से जो दीन, जो शरीयत, जो तरीक़ा ज़िंदगी दिया गया उसको ना माने, आखरत को माने लेकिन अपनी मर्ज़ी से माने, जहाँ जो दिल चाहा मान लिया, जो दिल चाहा वो ना माना। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग क्या हैं, यो खादेउन अल्लाह, धोखेबाज लोग हैं। किसको धोखा देते थे वो? क्या वो अल्लाह को देते थे? अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। असल में उनका धोखा जो था ना, वो दूसरे ईमान वालों को था और रसूल को धोखा देते थे। लोगों को क्या कहते थे? नहीं, हम भी तो दीन पेश करते हैं, हमारा दीन अच्छा है। देखो, जिस नबी के आने की बात थी ना, ये वो नहीं है। उनके दिल मानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नबी हैं जिनके बारे में ऐलान किया गया था। इंशाअल्लाह ताला जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आप ऐसे वाक्यात सुनेंगे कि यहूद के बड़े उलमा जैसे काब बिन अशरफ, हुई बिन अख्तब, ये लोग दिल से मानते थे कि ये नबी सच्चा है। उसकी सच्चाई की दलील थी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनके बाप हुई बिन अख्तब थे, सरदार थे। ये खुद रिवायत करती हैं कि मैंने एक मौके पे अपने बाप और चचा की बातें सुनी, भाई सुनाओ ये जो शख्स आया इसके बारे में क्या ख्याल है। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल वही है जिसकी खबर दी गई थी किताब में। अच्छा, वो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है मेरा भी यही ख्याल है। कहा अच्छा, अब बताओ कि तुम क्या मानोगे इसको? कहेंगे तो देखो, अगर हम मानने लग गए, हम सरदार मानेंगे तो सारे लोग भी मानने लग जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक जान में जान है इसकी मुखालफत करूंगा। तो दूसरे भाई ने कहा अच्छा, अगर तुम ये कहते हो तो हमारा भी यही ख्याल है। यानी इस खौफ से कि अगर हम सरदार मान लेंगे तो आम लोग भी मान लेंगे, फिर तो हम किसी को मना नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका कुफर क्या था, इन्होंने रसूल को नहीं माना। और धोखा क्या था कि इस धोखे में आ गए कि हम रसूल को माने बगैर, उसके लाए हुए दीन को माने बगैर अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में चले जाएंगे, कि अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा और हमें गलती से जन्नत में भेज देगा क्योंकि हमने अपने आप को मुसलमान कह दिया, हमने मोमिन कह दिया। क्या इनका ये धोखा चलेगा? नहीं। वमा यहदाउन इल्ला अनफुसहुम, असल में इन्होंने अपने आप को खुद ही धोखा दिया है। खुद को धोखा क्या था? कि खुद को जन्नत के अहल साबित करते हैं लेकिन कल कयामत के दिन जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सोचते हैं कि अल्लाह हमसे खुश है लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला इनसे खुश नहीं है। इनका ख्याल था कि हम कामयाब हैं लेकिन हकीकत में ये लोग कामयाब नहीं है। और किसी इंसान का ये धोखा सबसे बड़ा धोखा है कि वो अपने आप को नेक समझे और वो नेक ना हो, वो अपने आप को सच्चे दीन पे समझे लेकिन हकीकत पे वो सच्चे दीन पे ना हो। और आज भी मुनाफिक नुमा जो शख्सियत होती है उसका यही कसूर है कि वो अपने आप को हक पे समझते हैं। इसीलिए तो कहा कि वमा यशउरून, ये शऊर नहीं रखते। इतनी तकलीफ तो ये बात है ना कि अगर इसको हम समझ जाएं, क्योंकि इस रुकू में बार बार इसका तस्कर आएगा कि ला यशउरून मा यशउरून, के मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला ही क्या है कि वो अपने आप को मुनाफिक नहीं समझता। देखिए, किसी मजनू को आप दीवाना कहें तो वो बुरा मानता है कि खुश होता है? सोचिए जरा, पागल को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसको पागल कहा जाए। किसी दीवाने को आप कहें ना तू दीवाना है तो वो पत्थर उठा लेता है। जिस दिन पता चल गया मैं दीवाना, उस दिन तो दीवानगी दूर हो गई। ठीक है, तो मुनाफिक लफ्ज में जो सबसे डेंजरस चीज है ना, सबसे खतरनाक चीज है, वो क्या है कि उसको खुद भी नहीं पता कि मैं मुनाफिक हूं। आप सोचिए जरा, अब बीमार को बीमारी का पता ही ना चले तो वो अपना इलाज कैसे कराएगा? तो इसलिए इस बीमारी को बड़ी तफसील से समझने की जरूरत है, जो इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे, तिलावत सुनेंगे।
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ।
इस वक्त हम इंसानों के एक बहुत ही खतरनाक गिरोह की बातें पढ़ रहे हैं। اور ہم سب کو دل میں خوف رکھنا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز ہمارے اپنے اندر تو نہیں جن کا تذکرہ اس میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ذاتی محاسبے کی نیت سے ہم نے ان آیات کو سننا ہے. سنتے وقت کسی دوسرے کو تصور میں مت لائیں, کیونکہ ہم اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ رخصت دے لیتے ہیں جب ہم قرآن پاک سنتے وقت کسی اور کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اور یہ بات اس کی ہے. قرآن پاک سب سے زیادہ انسان کو فائدہ کب دیتا ہے؟ جب ایک انسان اپنے لیے سنے. علامہ اقبال کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے. کیونکہ جب ہم بیچ میں دوسروں کی باتیں لے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کہیں دور کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, حالات کو سمجھنے کے لیے آیات کہاں نازل ہوئیں یہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر آپ آیتوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. لیکن جہاں بھی عمل کی بات آئے یا کسی پہ کوئی تنقید کی بات ہو تو فوراً اس وقت اپنے آپ کو چیک کریں گے. چلیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر لائے, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. منافقین کے تذکرے میں پہلی اہم بات یہ پتہ چل گئی کہ جو بات یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. یہاں ہائی لائٹ کریے گا لفظ وما ہم بمومنین کو, کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. دو کال آمنے سامنے ہیں. ایک ان کا کال ہے, کیا؟ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. آپ اگر بہت اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں نا تو انورٹڈ کوماس میں ڈال لیں, بریکٹ ڈال لیں ان دونوں لفظوں کے بیچ میں. آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اس کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو کھینچیے اور لکھیے کہ یہ منافقین کا اپنے بارے میں خیال ہے. پھر آگے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کے نیچے پھر ایک ایرو ڈالیے اور لکھیے یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور کس کی بات سچ ہوگی؟ ایک بندہ جو بات اپنے بارے میں کہتا ہے, کیا وہ بات ٹھیک ہوگی یا وہ بات ٹھیک ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہوگی. تو پہلی بات اس میں عمل کی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں, خوف کا اظہار کریں کہ کہیں میرا معاملہ ایسا تو نہیں کہ میں تو اپنے آپ کو ایمان والا کہوں لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیں یہ جو بھی کہتی ہے نا اپنے بارے میں اس کو بس کہنے دو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایمان والی نہیں ہے. اور کسی انسان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ اللہ کی رائے اس کے بارے میں اس سے مختلف ہو جو اس کی رائے اپنے بارے میں ہے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چل گئی کہ صرف کال سے بات نہیں بنتی. یہاں دیکھیے گا میں یقولو, زبان سے کہا, کر کے نہیں دکھایا. تو انسان زبان سے جتنا مرضی اللہ پر ایمان لانے اور آخرت کا چرچا کرنے والا دکھے, جب تک اس کا عمل اس کے کال کی گواہی نہ دے تب تک اس کال کا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں کچھ کال ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پہ ان کو جنت دکھا دیتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں. لیکن اس کے برعکس کوئی انسان صرف باتوں سے نہیں خوش ہوگا. کچھ لوگ صرف باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کو تو کر نہیں پاتے, اللہ کو کہاں سے کریں گے؟ کوئی آپ کے بس صرف باتیں ہی کرتا رہے, آ کے آپ کو کہتے ہی رہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کیا آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے دیکھنا آئیے اب یہ باتوں سے خوش کرے گی مجھے, نہیں. حالانکہ ہم ان کے دل کی بات بھی نہیں جانتے, شاید اس وقت وہ بیچارہ کام کرنے کے موڈ میں ہو, لیکن اللہ کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے. اس لیے باتوں سے زیادہ کام, کام کام, جو کرے گا وہی بھرے گا. پھر اگلی بات, یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ کو ان کا دھوکہ کیا تھا؟ کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ صرف زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ آپ سے زبانی کلامی محبت کی بات کر کے ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں بڑا بن جائے, لیکن زیادہ دن تک نہیں چلے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر اس کا پول کھل جائے گا اور آپ اس کو پھر کہیں گے اچھا بس بہت بات کر کے مجھے نہ تم بہکاؤ. ٹھیک ہے, दूसरी बात इससे पता चली कि मुनाफिक की सिफात है। आप अपने नोट्स में एक साइड पे, जैसे पूरा पेज होता है ना, तो जहां से आप तफसीर ले रहे हैं ना, इधर इतनी लाइन एक लगा लें, जो इस रुकू के नोट्स हैं इतने हिस्से पे लिखते जाएं, ये जगह खाली छोड़ दें। यहाँ हम अब पूरी आयतों के साथ साथ एक लिस्ट तैयार करेंगे आयतों ही की रोशनी में कि मुनाफिक की क्या सिफात है। पीछे से अगर देख लें, आयत 8 से जो पहली सिफत मिली कि जुबान से ईमान का इजहार करते हैं अल्लाह पर। दूसरी सिफत उसी इस लिस्ट में आप लिखेंगे कि रसूल पर ईमान लाना इनकी लिस्ट में नहीं होता। तीसरी सिफत है मुनाफिकीन की, धोखा देते हैं, युहादेउन, डिसीविंग पर्सनैलिटीज, चीटर्स, धोखेबाज, फरेबी हैं। ठीक है, फिर अगली बात क्या है? धोखा देने में अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, उनका ख्याल है कि हमने अल्लाह को धोखा दे दिया। और ईमान वालों को धोखा देना कैसे होता है कि बज़ाहर उनके सामने ईमान का इजहार करते हैं ताकि इनसे फायदे हासिल करें, मुसलमानों की जमात में शामिल रहें, कोई माले गनीमत आए तो हमें उसमें हिस्सा मिल जाए, कोई मुसलमानों को फायदे की चीज़ मिले तो हमारा भी उसमें नाम आ जाए, घुले मिले रहें, हमारे बच्चों के रिश्ते इनके घरों में होते रहें, हमारी रिश्तेदारियां इनसे ना टूटें। ये सारे ईमान वालों को धोखा देने के तरीके होते हैं कि बस इनसे बना के रखो, बिगड़ो बिगाड़ो नहीं। लेकिन असल में क्या है? वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो धोखा देते मगर अपनी जानों को। यानी इनका सारा धोखा पड़ेगा किस पर? इन पर। कैसे? अब इस अपनी जान पर धोखे की बात क्या है कि इन्होंने सोचा था कि मुसलमान हो गए, अब जो मर्जी करें जन्नत हमारी है। कल कयामत के दिन इनके नफ्स को धोखा लगेगा जब इनको जन्नत की लाइनों में से निकाल कर जहन्नुम की फहरिस्तों में खड़ा कर दिया जाएगा कि आओ भाई, तुम उधर वाले नहीं हो, इधर वाले हो। कभी आपने किसी ऑफिस में, जहां लोग जाते हैं पेपर वर्क के लिए, कोई INS का ऑफिस हो सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन का, कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट का, लोगों को मुख्तलिफ लाइनों में लगे देखा होगा। कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स गलत लाइन में खड़ा हो और जब एंड टाइम पे पता चले कि मैं तो ठीक लाइन पे ही नहीं था, तो क्या होता है? उसको कहा जाता है अब जाइए वापस लगे और दूसरी लाइन के शुरू से आए। कोई उसको आगे नहीं करने देगा कि भाई आ जाओ। जैसे आप एयरपोर्ट्स पे आते हैं तो उस वक्त जब पासपोर्ट चेकिंग होती है, लंबी लाइनें हैं, आप लगे रहे उल्टी लाइन में खड़े हों, वो हो सकता है उसी मुल्क के पासपोर्ट वालों की थी, आप फॉरनर थे। अब क्या होगा? पूरी लाइन में आप गए, जो ही आप वहां पहुंचे उन्होंने कहा जी आपका तो ये काउंटर नहीं, वापस चले। उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि मेरा वक्त भी ज़ाया हुआ, शर्मिंदगी भी होती है कि कितने भुलक्कड़ हैं, इनको पढ़ना नहीं आता। बस ऐसा ही कोई तसव्वुर कर लीजिए उस शख्स का कि जो क़यामत के दिन जन्नत की लाइन में लगा हुआ था और वहां से उसको निकाला जाएगा, कितनी हसरत होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अपने नफ्सों को धोखे में डालते हैं, वमा यशउरून, और शऊर भी नहीं रखते। ये है तकलीफ दे बात। ये मुनाफिक की लिस्ट में अगली चीज लिखेंगे कि इसको शऊर नहीं होता, ना समझ होता है, बिल्कुल समझ से खाली है इसकी ज़ात, कि शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेंसिटिव नहीं होता, बस मोटी मोटी बातें करता है, अकल की कमी होती है, मामला फहम नहीं होता, समझता नहीं है कि इस वक्त क्या करना बेहतर है और क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, बिल्कुल शऊर से खाली। और इसी तरह इस लाशऊर होने या बेशऊर होने का एक और मतलब यह है कि उनको यही नहीं पता कि मैं खुद मुनाफिक हूँ। देखिए, ये मोस्ट डेंजरस बात है कि किसी को ये पता ही ना हो कि मुझे बीमारी क्या है। कैंसर का मरीज, अगर उसको ये पता ही नहीं कि मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगा और इलाज शुरू नहीं कराएगा। सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है ना ट्रीटमेंट में, वो डायग्नोज करना होता है। टेस्ट जो इतने ज़्यादा वो लोग करवाते हैं ना, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कैंसर है भी कि नहीं, आपके लंग्स ठीक हैं या आपकी किडनीज ठीक हैं, क्या खराबी किधर है। सबसे ज़्यादा मेडिकल की लैंग्वेज में मुश्किल चीज़ जो होती है, कामयाब डॉक्टर वो है कि जो सही डायग्नोज कर ले। दवाइयों के नाम तो लिखे हुए हैं, टाइफाइड होगा तो ये दवा देनी है, किसी को मलेरिया होगा तो ये दवा देनी है। फर्क किस बात का होता है कि डॉक्टर गलत डायग्नोस कर लेता है, था मलेरिया वो टाइफॉइड समझ के दवा देता है, बिगड़ जाता है। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर को करीब से पूछें तो सबसे ज्यादा जो 5-6 साल में मेहनत कराई जाती है ना, वो उसको बीमारियों की तशखीस की कराई जाती है। तशखीस निस्फ इलाज है और निस्फ परहेज है। एक गोली लिखता है डॉक्टर और आप ठीक होते हैं। आप सोचिए, कुछ डॉक्टर थे, आप कहते हैं आप उनके बजाते हैं, इतनी दवाइयां देते हैं, खाई वक्ती तौर पे फायदा हुआ लेकिन नुकसान कुछ और होने लगा। लेकिन कोई बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर पे जाते हैं तो वो सिर्फ आपको एक गोली देता है। क्यों? उसको पता है एग्जैक्टली आपको बीमारी क्या है। और जो छोटे मोटे बेचारे कमजोर डॉक्टर होते हैं, वो सारी डाल देते हैं, टाइफाइड की भी डाल देते हैं, मलेरिया की भी डाल देते हैं, कि चलो कोई ना कोई तो होगी, कोई ना कोई तो काम आ जाएगी। इसी तरह आप देखिए, जो कम पढ़ा लिखा शख्स होता है ना, वो इधर उधर की बातें मारता है, ये भी कर लो, कुछ कर लो, कुछ ठीक होंगी कुछ बेकार होंगी। लेकिन एक पढ़े लिखे, एक इल्म वाले से बात करें, वो दो टोक दो लफ्जों में बात करेगा, बंदा मुतमईन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनाफिकों का मसला क्या है, इनको खुद भी नहीं पता कि मैं मुनाफिक हूँ। ये वो चीज़ थी जिसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान किया हुआ था। हजरत हुजैफा बिन जमान एक सहाबी थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लम ने गज़वे तबुक से वापसी पे कुछ मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, जिन्होंने रात को छुप के हमला करने की कोशिश की थी। और साथ ही कहा कि दूसरों को ना बताना, क्योंकि इस्लाम दूसरों की बुराइयों को उछालने की दावत नहीं देता। तो हज़रत उमर जाके हज़रत हुज़ैफ़ा से ये इल्तिजा किया करते थे कि मुझे किसी और की परवाह नहीं, सिर्फ ये बता दो कि मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है। 80 से 80 के करीब बड़े बड़े सहाबे कराम और सहाबियात ऐसी हैं जिनको अपने ऊपर निफाक का शुबा था, जिसमें हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला का नाम भी आता है। इतना डरते थे वो निफाक से, क्योंकि कहते थे अल्लाह कहते हैं कि वमा यशुरून, इनको नहीं पता तो हो सकता है मुझे भी ना पता हो। इसी तरह एक कॉल आता है कि निफाक से नहीं कोई डरता, यानी अपने ऊपर निफाक से नहीं डरता मगर मोमिन। ईमान की अलामत है कि आपको अपने दिल के अंदर निफाक का खौफ हो, और निफाक से नहीं कोई बेखौफ होता मगर मुनाफिक। आप देखिए, कोई दीवाना होता है ना, उसको कितना गुस्सा आता है जब आप उसको दीवाना कहते हैं, पागल को पागल कहें तो गुस्सा आता है। तो आप देखिए कि निफाक जो है ना, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हर वक्त इस बात की फिक्र लगी रहनी चाहिए कि मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हूँ, और दूसरों से ज्यादा अपना मुहासबा करने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा मुनाफिक है कि नहीं? अलामतों से। एक लिस्ट तो अभी आपकी इस रुकू से तैयार हो रही है। कुछ निफाक की अलामतें हदीस से मिलती हैं, मसलन बात करे तो झूठ बोले, खयानत करे, जब आप अमानत रखें तो उसमें खयानत कर ले, जब लड़ाई झगड़े का मौका आए तो गाली गलौज करे, वादा करे तो वादा पूरा ना करे। ये इंसानों में ही तो ढूंढनी है बातें। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई भी बात है तो फौरन अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से बचा ले। अगली अलामत क्या है? फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है? दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है, नफ्स की गुलामी की बीमारी है, माल की मोहब्बत है। सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, अपनी जात में जीते हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते। दिल के अंदर इतना कुछ बसा हुआ है कि अल्लाह की जात और अल्लाह की बात को बसाना इनके लिए मुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला भी क्या करता है? फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला इनके मरज़ को और बढ़ा देता है। देखिए, जब बीमारी को बीमारी ना समझा जाए तो परहेज़ नहीं की जाती, और जो परहेज़ नहीं करते उनकी बीमारी बढ़ जाती है। मुनाफिकों का मसला क्या है कि ये ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं जो इनकी तारीफें करें। हर वो शख्स जो इनकी बुराई इनको बताए, ये उसको पसंद नहीं करते, ये उससे दोस्ती छोड़ देते हैं कि ये तो मुझ पे तनकीद करने लगा। अब नतीजा क्या हुआ कि जब इनके करीब वाले लोगों ने इनको बताया नहीं, ये तो खुद अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो दिन ब दिन इनकी बीमारियां बढ़ने लगेंगी। अमूमन देखिए कि दिल की बीमारियां कब ज्यादा होती हैं? जब नफ्स की बात ज्यादा मानी जाए, जो चाहा खा लिया, जब चाहा खा लिया, सो गए, उल्टे सो गए, बड़े हैवी खाने खा लिए, फ्राइड चीज़ें खा ली, इसी तरह सिगरेट पीने से आप देखिए दिल की बीमारियां होती हैं, बहुत मिर्च नमक वाला खाना, ऑयली फूड खाना, इसी तरह आप एक जुमले में कह सकते हैं कि निफाक की बीमारी कब होती है, जब बंदा लस्ट के पीछे लगता है, ख्वाहिश का गुलाम, जो चाहो करो, जैसा चाहो जियो। आज के दौर का कल्चर ही ये है कि लोगों को लस्ट प्रस्त बनाया जा रहा है। आज के दौर का बहुत बड़ा आइडल क्या है? लस्ट, जो चाहो करो, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया खोल दी है हम पे, बहुत कुछ है हमारे पास, लिहाजा और किस लिए हम काम करते हैं, जीते इसीलिए कि बस हम खाएं पिएं ऐश करें, और यही हमने अपने बच्चों के साथ किया, उनको भी आराम पसंद बना दिया, शुरू से उन बेचारों को हमने इतना उनकी बातें मानने वाला बना दिया कि जब बड़े होके हमारी बात नहीं मानते तो फिर हम परेशान होते हैं। हालांकि जब बचपन में छोटी छोटी बातों में आप उनको पूछेंगे हर बात में, तो बड़े होके तो आपसे और मानने मनवाएंगे, फिर हम रोते हैं कि हमारे किए हुए रिश्ते इनको पसंद नहीं आते, हमारे दिए हुए कपड़े इनको पसंद नहीं, इसलिए कि बचपन में आपने उनको इतना खुद परस्त बना दिया। और यकीन करें कि बहुत खुद परस्ती का दौर है, बैठने से, चलने से, बात करने के स्टाइल से पता चलता है कि इस बंदे के अंदर अना भरी हुई है, अकड़ से भरे हुए, कुछ लिबास भी ऐसे होते हैं अकड़े हुए, पहन के झुक ही नहीं सकता बंदा, और कुछ अकल भी अकड़ी होती है। और बाज़ लोग जो बज़ाहर दीन के लबादे में अपने आप को रखते हैं, उनके अंदर भी बड़ी अकड़ होती है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बीमारी को और बढ़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बहुत तकलीफ दे अज़ाब है, दर्द होंगे। पीछे काफिरों की बात हुई तो अज़ाब अजीम था, वो एक अज़ाब होगा बड़ा, अलीम में कंटिन्यूटी है पहली बात है, बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी बात अलीम में होती है एक ही वक्त में कई मुख्तलिफ अज़ाब, मसलन हाथों पे अगर छाले पड़े हुए हैं तो पाँव में हो सकता है कि कांटे चुभे हों, टांगों में सांप लिपटे हो सकते हैं तो हो सकता है कि सर के ऊपर बिच्छू काट रहा हो, और अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे तमाम लोगों में से कि जिनको एक ही वक्त में कई अजाब हों। बस अब आप देखिए इंसान को एक बीमारी होती है ना, वो उसका इलाज कर लेता है, लेकिन बस लोगों को ये कहते सुना गया, क्या बताएं आपको, एक दवा खाते हैं तो उससे शुगर ठीक होती है पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो दिल धक धक करने लगता है, जब दिल की दवा खाते हैं तो उसकी वजह से जिस्म बड़ा गर्म हो जाता है, ये और वो। अल्लाह ना करे कि दुनिया में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो कल वहाँ क्या होगा। अल्लाह ताला ने ये सारी बात बता दी कि देखो इनकी बीमारियों को फिर मैं और बढ़ाता हूँ। जुनेद बगदादी एक बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि दिलों के अमराज ख्वाहिशात नफसानी की इत्तबा करने से पैदा होते हैं, जैसे इंसान के जिस्म के अमराज जो हैं वो बेएतदाली की वजह से होते हैं, यानी जैसे जिस्मानी बीमारियां, इसी तरह दूसरी बीमारियां भी होती हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह ताला इनको दर्दनाक अजाब देगा। ये दुनिया में भी होता है, हम सोचते हैं अच्छा कोई मुनाफ़त करेगा तो उसका नुकसान आखरत में होगा, हम एकदम जंप कर जाते हैं, सच नहीं है ये, लिख लें ये बात। जिस तरह नेकी का असर पहले दुनिया में दिखता है, इसी तरह निफाक और गुनाह का असर भी पहले दुनिया में दिखता है। हम आज अपने इर्द गिर्द जो मुश्किलात देखते हैं, जो मसाइब देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद होते हैं। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हमारी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदल लें, हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने हमें एक मुकम्मल लाइफस्टाइल दिया, मुकम्मल, कंप्लीट वे ऑफ लिविंग, जब हम उसको छोड़ के जीते हैं ना, तो उसकी वजह से आज सारे मसले, औलाद और माँ बाप के प्रॉब्लम्स देखें, शोहर और बीवी के प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, माँ बाप और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को देखिए, सब की वजह क्या है कि हम उस स्टाइल को छोड़कर जो हमें सच्चे इस्लाम ने दिया था, हम निफाक वाले इस स्टाइल में चलने लगते हैं, और नतीजा क्या निकलता है, एक झूठा लाइफस्टाइल। इसी को अल्लाह ताला ने कहा बीमा कानू यकजीबून, ये अगली करेक्टरिस्टिक नोट कीजिएगा, अगली खसूसियत है मुनाफिकों की कि वो झूठे होते हैं। देखिए झूठ सिर्फ जुबान से नहीं बोला जाता, झूठ जज्बात से भी बोला जाता है, किसी से झूठी हमदर्दियों का इजहार करना। झूठ तकल्लुफ को भी कहते हैं। एक होता है जुबान का झूठ, उसकी क्या मिसालें मौजूद हैं? कभी आपने लोगों को झूठ बोलते और सुनते देखा? सिर्फ अगर आप अमली जिंदगी के झूठ जमा कर लेना तो मेरा हैल के शर्म आने लगेगी। बाज दफा हम ऐसे झूठ बोलते हैं जिनके बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, जिसको कहते हैं ना गुनाह बेलज़्ज़त। मसलन रिक्शे वाले को क्या कहते हैं, हम तो रोज इतने पैसे दे के जाते हैं। दुकानदार को जाके क्या कहेंगे, पीछे से तो इतने की मिल रही थी। अच्छा कभी बाज दफा दिल अपने की बात होती है, कह दूसरों की देते हैं। मसलन बाज दफा क्या होता है, अपने दिल में आता है कि ये काम ठीक नहीं। मिसाल दे देती हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं कह रही, मिसाल है किसी को इधर आके लगता है कि जगह बहुत तंग हो गई, तो अब अपने दिल की बात है ना, तो वो किसी के नहीं। लोग कहते हैं कि वहां जाएं तो जगह कम होती है, तो फिर इसलिए हम नहीं आते। ऐसी बातें करना जो दिल अपने की मर्जी है, मर्जी अपनी होती है, कह दूसरों का देते हैं, ये भी झूठ होता है। फिर इसी तरह आप देखिए, सिर्फ अगर आप जमा करें, आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ कि आप एक लिस्ट तैयार करें सुबह से शाम तक जो आप बेकार के झूठ बोलते हैं। मसलन 1000 बार कहा है, कहा होता है 1000 बार। शोहर को क्या कहते हैं, सुबह से तो बैठी नहीं, बाकी नहीं बैठे होते हैं। फिर और क्या झूठ बोलते हैं जी, आप कोई मिसाल दें अपनी जरा झूठ की, जो बातों में अमूमन बिल्कुल हमें समझ ही नहीं होती जो हम झूठ बोल रहे होते हैं। जी 1 मिनट में आई, और पता होता है कि 10 मिनट लगेंगे। जी आप बताइए। जी दुकान पे गए, चीज देखी, नियत कोई भी नहीं थी, लेकिन कहा अच्छा बाद में आती हूँ। अब वो अगला आपको इंतजार करता रहा, तो वो ऐसा हो गया। जी आप बताइए। जी 70 बार तुम्हें समझाया है ऐसा, बिल्कुल। और कोई बात? जी जो 2 मिनट में पक जाएगा खाना। हाँ कितनी बातें आप देखिए, ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल झूठ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। फिर ये तो जुबान के झूठ है ना, इसको आप जमा कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए अमल का झूठ होता है, फिर झूठा लाइफस्टाइल, तकल्लुफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी एक जौजा ने पूछा कि हम कभी कहीं जाते हैं, हमें भूख लगी होती है, और अगला में कहता है कि खाना खा लें, तो हम कहते हैं नहीं भूख नहीं है, तो क्या ये भी झूठ है? तो आपने फरमाया कि झूठ और भूख को जमा ना करो, यानी ये झूठ तो भूख तो पहले ही थी, अब झूठ भी हो गया, ये भी गुनाह है, झूठा तो कर लो। फिर आप देखिए चीज़ों की कीमत ज़्यादा बताना, लिए आपने किसी रेगुलर स्टोर से और कह दिया किसी गैलरिया स्टोर से लेके आए हैं, ब्रांडेड चीज़ें, चीज़ लेके आम की उस पर ब्रांड नेम का टैग लगा लेना, भाई फ़र्क क्या पड़ता है? आपने सोने का पहना, चांदी का पहना, हू केयर्स, किसी को क्या लगे? तो इन सारी किस्मों को झूठ। और आज तो आप देखिए झूठा स्टाइल है ना, घर आपका है कोई नहीं, तख्ती आपने अपने नाम की लगाई हुई है, आपने 10% दे के कहा यह मेरा हो गया, आपके बच्चों तक आपने कर्जा दे दिया उनकी नस्लों को, और कह रहे हैं ये आपका घर है, झूठ है ना? बाज लोग ऐसे ऐसे स्टाइल की लाइफ रखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखे, घरों को देखे, ऐसे रखते हैं वाह इतना इनके पास, लेकिन जेब में $10 भी नहीं होते, क्योंकि वो तो सारा है ही क्रेडिट का। पहले कहते थे चादर देख के पाँव फैलाओ, आप कहते हैं जितने मर्जी पाँव फैलाओ हम आपको कर्जा देने को तैयार हैं, ताकि आपकी नस्लें भी गिरवी में आ जाएं। पूरा लाइफस्टाइल जो है झूठ का है। अल्लाह ताला कहते हैं ये निफाक की जिंदगी है, और इसके नतीजे में दुनिया में क्या होता है, फसाद फैलता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है।